بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کے شہر پشاور میں گرجا گھر یا چرچ پر دہشت گردانہ حملہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جناب ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ دو روز قبل یعنی اتوار کو پشاور کے گرجا گھر یا چرچ میں جب مسیحی برادری کے لوگ عبادت کر کے گرجا گھر سے باہر نکل رہے تھے، عین اسی وقت دو خود کش بم دھماکوں سے 80 سے زائد تقریباً 100 کے قریب افراد مارے گئے اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ دہشت گردانہ اتنا بھیانک، اتنا خوفناک تھا کہ نہ صرف پشاور کی فضا بلکہ پورے پاکستان کی فضا سوگوار ہے، اور اس دہشت گردانہ حملے کی مذمتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ نہ صرف مسیحی برادری بلکہ پوری پاکستانی قوم اس دہشت گردانہ حملے سے انتہائی غمزدہ، غمگسار اور افسردہ اور غمگین ہے، اور ہر طرف سے مذمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ مسیحی برادری نے اس واقعے کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے، لیکن دیگر جو برادری ہے، جو دیگر مسلم مکاتب فکر کے افراد ہیں، وہ بھی احتجاج کرنے سے پیچھے نہیں رہے۔ چنانچہ آج خود پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک قرارداد مذمت پاس کی گئی اور اس حملے کی بھرپور مذمت کی گئی، اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حملے کے ذمہ داروں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب حکومت طالبان کے ساتھ مذاکرات کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ حکومت طالبان سے مذاکرات شروع بھی کر چکی ہے۔ اگرچہ حملے کے فوراً بعد وزیراعظم پاکستان نواز شریف جو نیو یارک جا رہے تھے، لندن میں مختصر قیام کے دوران انہوں نے کہا کہ اس حملے سے اب جو اے پی سی میں باتیں ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا اب طالبان کے ساتھ حکومت پاکستان مذاکرات کے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے گی، یا مذاکرات ایک بار پھر طالبان کے وحشیانہ اقدامات کے نتیجے میں تعطل کا شکار یا دو چار ہو جائیں گے؟ بہرحال یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں جو ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہوں گے، کراچی اسٹوڈیو میں ہوں گے اور لندن اسٹوڈیو میں ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے ہماری یہ رپورٹ۔
پاکستان میں دہشت گرد تنظیم طالبان سے مذاکرات کی تیاریوں کے دوران ہی پشاور کے ایک گرجا گھر پر دو خودکش حملے ہوئے، جن میں 80 سے زائد بے گناہ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کا سلسلہ عرصے سے جاری ہے، تاہم پشاور کا حملہ بہت بڑا حملہ سمجھا جاتا ہے اور اس پر عالمی رد عمل سامنے آیا ہے، جبکہ پورے ملک میں سوگ کا عالم ہے۔ حملے سے انتہا پسند تنظیموں کی وحشیانہ ماہیت کا ایک اور ثبوت ملا، حالانکہ اس ماہیت کے ثبوتوں کی کوئی کمی نہیں بلکہ ایسے ثبوتوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں بہت پر امید نظر آنے والے پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھی پشاور حملے کے بعد مایوس دکھائی دیے، اور انہوں نے امریکہ جاتے ہوئے لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ اے پی سی میں حکومت کی جو سوچ تھی اب اس پر آگے بڑھنے سے ہم قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی کوششوں کے باوجود بات چیت کے عمل میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ چرچ پر حملہ کرنے والے اسلام کی تعلیمات کے خلاف بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں۔ ادھر امریکی میڈیا نے بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے پشاور چرچ پر حملے کے بعد طالبان سے بات چیت کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پشاور میں چرچ میں مہلک ترین دھماکے میں 83 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد نواز شریف نے عسکریت پسند باغیوں کے ساتھ غیر مشروط امن مذاکرات کی منصوبہ بندی ختم کر دی۔ رپورٹ کے مطابق جب سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے نواز شریف کو طالبان سے مذاکرات کا اختیار دیا گیا، اس وقت سے طالبان نے حملوں میں اور بھی تیزی کر دی۔ طالبان رہنما حکیم اللہ محسود نے حملوں میں تیزی کا حکم دیا اور 14 ستمبر کو انہوں نے حکومت کے سامنے 50 عسکریت پسند کمانڈروں کی رہائی اور فاٹا سے فوج کی پوری طرح واپسی کی 2 شرطیں رکھ دیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ میجر جنرل ثراء اللہ نیازی کی شہادت 2007 کے بعد طالبان کی سب سے بڑی کارروائی تھی۔ اس واقعے نے نواز اور فوج کے درمیان تناؤ پیدا کیا۔ میجر جنرل ثناء اللہ نیازی کی شہادت نے پاکستانی عوام اور خصوصاً پنجاب میں غم و غصے کی لہر پیدا کی۔ چرچ حملے نے پاکستانی قوم کو شدید رنج پہنچایا۔ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں بے شک سیاسی جماعتوں نے ایک زبان ہو کر مذاکرات کی حمایت کی تھی، لیکن شروع ہی سے اس سلسلے میں ملک کے اندر مختلف حلقے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، جو پشاور حملے کے بعد بجا معلوم ہوتے ہیں۔ پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے نہایت نرم الفاظ اور مصالحانہ انداز میں طالبان کو بات چیت کی دعوت دی تھی، اور ڈرون حملوں کا مسئلہ جن پر طالبان کو سب سے زیادہ اعتراض ہے، اقوام متحدہ میں لے جانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ طالبان کے بعض تحفظات دور کرنے کا یقین دلایا تھا۔ طالبان کا ابتدائی رد عمل بھی مثبت تھا، پھر اچانک انہوں نے ناممکن العمل پیش کی شرائط رکھ دی۔ طالبان نے بے شک امن مذاکرات کی تجویز پر مثبت رد عمل ظاہر کیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ مذاکرات کی پیشکش کو حکومت کی کمزوری تصور کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان نے اپنے مطالبات کی لمبی فہرست پیش کی شرط کے طور پر رکھی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ طالبان کا وجود پاکستانی نہیں، پورے علاقے کے لیے تشویش کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اس مسئلے کے یہ صورت اختیار کرنے میں پاکستان کی حکومت کو بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور اب سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی یاور بخاری۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی یاور بخاری صاحب، آج 2 دن گزر چکے ہیں، یعنی اتوار کو یہ بڑا سانحہ رونما ہوا پشاور کے چرچ میں، اس کے بعد اب تک سیاسی حلقوں میں کیا تاثر ہے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا، اب اس کے بعد مذاکرات کا جو ایک سلسلہ شروع ہونے والا تھا طالبان کے ساتھ حکومت کی طرف جو پیشکش کی گئی تھی، اب اس کا مستقبل کیا ہوگا؟
جی، جو پرو طالبان قوتیں ہیں وہ تو ابھی تک یہی چاہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور مذاکرات ہی اس معاملے کا واحد حل ہیں۔ لیکن جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ سیاست نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں، بلکہ طالبان کے ساتھ جو ہے اب آپریشن کے ذریعے کام بات ہونی چاہیے۔ وہاں پر ایک ایسا آپریشن کیا جائے جیسا سوات کے علاقے میں آپریشن کیا گیا تھا۔ اس آپریشن سے اگرچہ وہاں پر امن قائم ہو گیا اور کافی حد تک وہاں پر لوگوں کی جو معمول کی زندگی ہے وہ واپس لوٹ آئی تھی، اس لیے ان کے اب یہ ایک نئی ڈیبیٹ ایک شروع ہو گئی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا آپریشن کیا جائے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ رکھا جائے، اور مذاکرات کے بعد جو ہے وہ اگر وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے تو پھر جو ہے ان کے خلاف ایک روتھلیس آپریشن کیا جائے۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا، یہ 2 دن پہلے یہ پشاور میں چرچ پہ جو واقعہ ہوا، اس کی ٹائمنگ جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ اس سے پہلے جو میجر ثناء اللہ، میجر جنرل ثناء اللہ کا واقعہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اور اب یہ جو ہے چرچ پہ جو حملہ کیا گیا، اس کی ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے، کیونکہ یہ سلامتی کونسل کا، جنرل کونسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے، وہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم نے جانا تھا اور وہاں پہ خطاب بھی کرنا تھا، اور وہاں پہ اس ایسا ایک موقع ہوتا ہے جہاں دنیا کے جو لیڈران ہوتے ہیں، جو رہنما ہوتے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اگر یہ واقعات نہ ہوئے ہوتے تو جس طرح حکومت نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں جو ہے امریکی ڈرون حملوں کا معاملہ جو ہے یہ اٹھائیں گے، تو وزیر اعظم بڑے اطمینان کے ساتھ اگر یہ واقعات نہ ہوئے ہوتے تو وہاں فرنٹ فٹ پہ جا کے یہ بات کرتے، اور امریکی ڈرون حملوں کا جو یہ واقعہ ہے ان کے خلاف جو ہے یہ وہاں پہ بات کرتے۔ لیکن اب میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم ان واقعات کے بعد وہ ان کی جو حیثیت ہے وہ بیک فٹ پہ آ گئی ہے، وہ بیک فٹ پہ آ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ یہاں پہ خود بھی مایوس کن ان کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ اب وہ جو اے پی سی سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ نہیں ہے، اب ہم اے پی سی کے بعد جو ہے اب یہ جو صورتحال نہیں پیدا ہوئی ہے اس کے مطابق سوچیں گے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا تھا کہ وزیر اعظم اب مذاکرات کے حق میں نہیں رہے، لیکن جو ان کو مایوسی یہ ہوئی کہ جو وہاں جو جنرل کونسل کے اجلاس میں انہوں نے وہاں پر جو دنیا بھر کے جو رہنما آنے تھے ان کے ساتھ جو ملاقاتیں کرنی تھیں وہ انہوں نے بڑے اطمینان سے، اب وہاں ہر جہاں جس سے بھی ملاقات ہوگی ان سے یہی سوال پوچھا جائے گا کہ جی آپ کے وہاں پر یہ جو ہے دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں امریکی میڈیا نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ دہشت گردوں کے حوالے ہاتھوں میں پاکستان کے جو ایٹمی جو انہوں نے تیار کیے ہیں وار ہیڈز وہ ان کے ہاتھ میں لگ سکتے ہیں، اور بڑی بات دیکھیں کہ اس سے اگلے دن ہی جو ہے امریکہ نے ڈرون حملہ کر دیا یہ ادھر ہمارے فاٹا کے علاقوں میں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے ظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ امریکہ اور امریکی گماشتے ہی اس ساری صورت پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے
یار صاحب میں پھر حاضر ہوں گا
جی، وہی عناصر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے پاکستان میں امن قائم ہو، وہ پاکستان کے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے معاشرے میں انتشار پھیلا کر پاکستان میں مذہبی تفرقہ بازی یا سول وار قسم کی کوئی چیز ایسے پھیلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے امن نہ رہے اور یہاں پر یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہ ہو سکے، کیونکہ
یار صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔
پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور عالم اسلام کا یہ ایک واحد مضبوط ترین ملک ہے جو ایٹمی قوت رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو طاغوت ہے اس کی آنکھوں میں یہ کھٹکتا ہے۔ اور ایک اور بڑی بات میں یہاں
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، یہ یار صاحب میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کی انتہائی سینئر اور سرکردہ صحافی تبصرہ نگار آغا مسعود حسین صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی آغا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پشاور چرچ پر دہشت گردانہ حملے کو،
وعلیکم السلام
جی نوازش شکریہ، میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو حملہ ہوا پشاور میں چرچ پر اس کے محرکات مقاصد اور مضبرات پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
دیکھیے میری وزارت داخلہ کے بعض اہم ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو بات چیت کے سلسلے میں اے پی سی نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل فیصلے پہ قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چرچ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کے سیاستدانوں کے مابین تھوڑی سی مایوسی پھیلی ہے، اور بعض تو لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریویو کریں گے اس پورے معاملے کو، اور خود وزیر اعظم صاحب بھی تھوڑے سے مایوس نظر آتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کلپرٹس تھے وہ اب آئیڈینٹیفائیڈ ہو گئے کہ یہ چرچ پہ حملہ کس نے کلایا، یہ مولانا فضل الرحمان تھے جن کو سواد سے نکالا گیا، انہوں نے کرزائی کے کہنے پر یہ ساری کاروائی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میجر جنرل ثناء اللہ کو اور لیفٹیننٹ کرنل صاحب کو اور لائنس نائب کو جو مارا ہے وہ روڈ وہیں سے گزر رہی تھی جو افغانستان کے بالکل قریب سے، اور یہ فضل اللہ صاحب نے کروایا ہے، یہ تو بات اب سامنے آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ چرچ پہ جو حملہ ہوا ہے جو دہشت گرد تھے جو نوجوان لڑکے تھے 22 اور 25 سال کی عمر کے وہ بھی انہی کے کارکن تھے مولانا فضل الرحمان کے، تو آپ اندازہ لائیں یہ مولانا فضل اللہ جو ہیں یہ وہ تھے کہ جنہوں نے سوات میں ایک اپنی خود مختار ریاست قائم کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان کے سلسلے میں ان کے جو الفاظ تھے پاکستان کی جمہوریت کے سلسلے میں اسلام کے سلسلے میں، تو یہ تو ایکسپوز ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ بیان آیا ہے سابق سربراہ آئی ایس آئی کے جناب حمید گل صاحب کا، حمید گل صاحب نے کہا کہ 25 ایسے افراد ہیں 25 ایسے گروپ ہیں تحریک طالبان میں جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، امن کی کوششوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 5 گروپ ایسے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں، ان کو ہندوستان اور ان کو امریکہ اور ان کو اسرائیل جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے۔ آج پورے سہ سرخیوں سے ان کا یہ بیان خصوصی طور پر شائع کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں بحیثیت سابق سربراہ آئی ایس آئی کے اور میرے بہت سے رفقا اس بات پہ بالکل یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کو مذاکرات کا جو انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے اور پیشکش کی ہے اس کو اس پہ قائم رہنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی کوشش یہی ہے جو امریکہ کے حواری ہیں جو سامراج کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تو امن قائم نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو فوج ہے وہ اتنی زیادہ جذباتی ہو جائے کہ وہ نارتھ وزیرستان میں وہ فوجی کارروائی کرے، तो यही तो कोशिश अमेरिका की भी थी। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल करजाई ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी कि अगर पाकिस्तान की फौज जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में नहीं जा रही तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं अमेरिका के फौजियों से कि वो वहां पे चली जाए जहां पर वो एपिसेंटर है टेररिस्ट का। तो इस पर अमेरिका ने बहुत बुरा मनाया था। फिर उन्होंने उसी दिन एक और बयान दिया कि अगर नहीं हुआ तो मैं पाकिस्तान को खंडर बना दूंगा। तो ये सारे जुमले तो हैं हमारे हाफ़िज़े में हैं, हमारे रिकॉर्ड में भी। हम समझते हैं कि किस किस्म की पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। मैं आपकी खिदमत में बड़े वसूख से ये अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मन ने घेर लिया है और ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार है। ये प्रॉक्सी वार जो है जो हुकूमत पाकिस्तान बताना नहीं चाहती लोगों को, ये प्रॉक्सी वार है। अब अंदाजा लगाइए कि जनाब चौधरी निसार साहब जो एक जमाने में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा थे, आज वो वजीर दाखिला हैं, वो असेंबली में ये एक मजे का खेज बयान दे देते हैं कि जुनूदुल्लाह ने तो कबूल कर लिया है जिम्मेदारी चर्च की। और ये तो कोई मामूली सा ग्रुप है, उनको यही नहीं मालूम कि ये ग्रुप बलूचिस्तान में बैठ के लश्कर जंगवी के साथ मिलके किस तरीके से हजारा कम्युनिटी को उनको तहतीक किया, किस तरह मारा इन्होंने ईरान के खिलाफ, सिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर किस तरह मस्जिदों पे हमले किए। ये तो ईरान की हुकूमत ने, अगर वो जहाज नहीं पकड़ा जाता जिसमें जुनूदुल्लाह के रहनुमा थे और उनको कोर्ट पे ला के उनको फांसी की सजा दी गई, तो हमारे हमारे चौधरी निसार अली साहब को यही नहीं मालूम कि जुनूदुल्लाह ग्रुप कहाँ है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है? या तो वो छुपाना चाहते हैं, लेकिन यह है कि क्योंकि मीडिया इतना आजाद है, मीडिया समझता है कि सूरत हाल क्या है, तो मीडिया तो बात कर रहा है। और उनको खासा खिफत का सामना करना पड़ा कि जबकि उन्होंने ये अल्फाज अदा किए। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये कहें, हुकूमत पाकिस्तान ये कहे कि हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वार चल रही है और प्रॉक्सी वार के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। मैं हमीद गुल साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि अमन के सिलसिले में जो कोशिश हो रही है और जो 25 ग्रुप तैयार हो गए पाकिस्तान से बात करने के लिए, और हो सकता है कि उसमें हमीद गुल, मौलाना समीउल्लाह का कोई बहुत बड़ा किरदार हो, हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया आगा साहब, मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू होने वाली थी पाकिस्तान के अकलियती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, अकलियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली तारिक क्रिस्टोफर कैसर साहब से, लेकिन बज़ाहिर अब तक उनसे हमारा रब्ता ना हो सका। उनसे बहरहाल वादा था कि वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस वक्त चलते हैं अब लंदन स्टूडियो, जहाँ पर आलमी उमूर के माहिर मकसूद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
सिद्दीकी साहब, आप इस पेशावर के हमले को किस तनाजुर में देखते हैं, किस जाविया निगाह से देखते हैं?
देखिए, जब भी इस किस्म के जो कारनामे होते हैं और उसको उसमें हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो ये है कि इसको इससे सबसे ज़्यादा इनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है और नुकसान सबको सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और उसमें उससे फिर हम ये नतीजा निकालें कि इसका असल मकसद क्या है। अभी तक जहाँ तक मैंने खबरों में पढ़ा है तो ये हकीमुल्ला मसूद की जो ग्रुप है जो एक तरह का तहरीक तालिबान का पाकिस्तान का है, उसने तो उसको कबूल नहीं किया कि उन लोगों ने ये जो बम ब्लास्ट करवाया है ये। लेकिन बहुत सारी खबरों में अमेरिका से भी और सब जगह से उन्होंने कह दिया कि इसमें तालिबान शामिल हैं, और बहुत मुमकिन है कि तालिबान का कोई ग्रोह ऐसा हो, या जैसे अभी हमने आगा साहब से सुना कि वो जुंदुल्ला वगैरह इसके अंदर उन्होंने किया हो। लेकिन तालिबान की अगर आप तारीख देखें तो वो जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इस तरह के बड़े जो हादसात होते हैं जिसमें ज़्यादा तादाद में लोग मारे जाते हैं उसमें उनका हाथ आमतौर पर नहीं होता। यानी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई तालिबान का हामी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी बहुत गहरी चालें हो सकती हैं, वो उसको समझना चाहिए। और ये कि जैसे कि प्रॉक्सी वॉर का भी हमने जिक्र सुना, जाहिर है कि हर कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान को किसी सूरत से उठने ना दिया जाए, क्योंकि वहां पे अब जैसे
सिद्दीकी साहब, ये जुंदुल हफ्सा नामी एक ग्रुप है जो तालिबान का ज़ैली ग्रुप है, उसने तो कल अपने बयान में इसकी जिम्मेदारी कबूल किया, वो कलदम तहरीक तालिबान का ज़ैली ग्रुप है।
उन्होंने लेकिन ये कि ये जो जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें तो ये शामिल नहीं है, ये सबसे बड़ी बात सब्जी। और जुंदुल्लाह का देखिए, मेरा सवाल सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि ये क्यों होता है कि आए दिन पाकिस्तान में, अभी मसीही ग्रुप को छोड़ दें, कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते पाकिस्तान में और हमारी इतनी खुफिया एजेंसीज हैं जिसपे इतना अरबों रुपया खर्च हो रहा है, वो किसी एक भी हमले को नहीं रोक पाते, या अगर रोकते हैं तो कभी शाज़ व नाज़िर सुनने में आता है कि एक खुदकश हमला उन्होंने रोका। ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इनसे सवाल ही करना चाहिए, आप लोग आपका काम क्या है कि आपका, मैं ज़रा से आपकी इजाज़त से ये मैं बताऊं कि ईरान में भी अभी बहुत कोशिश की गई होगी, की गई थी, आपको शायद इल्म होगा कि बलोचिस्तान और क्या कहते हैं ये जो ये इलाके जो हैं जिसमें कुर्दिस्तान वगैरह के, इसमें कोशिश की गई थी कि शिया और सुन्नी का झगड़ा कराने के लिए, और उसमें क्योंकि ईरान में भी ये सारे मोसाद और CIA जो हैं बहुत भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि वही चीज़ शुरू हो जाए जो कि सीरिया में हो रही है, लेकिन ईरान की जो अपनी एजेंसीज हैं उन्होंने पकड़ लिया, उससे पहले कि कुछ हो सके उन्होंने उनको जो परपेट्रेटर्स उनको पकड़ के उनको उनको अपने कब्जे में कर लिया। मुझे हैरत है कि कभी अभी तक ये सुनने में नहीं आता कि कभी कोई ऐसे को बड़ा खुदकश हमला जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने रोका हो या उनको उसको पहले से इल्म हुआ हो, पहली एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो अब जो 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 मसीही बरादरी के साथ हुआ है वो एक एक कड़ी है वो उसकी, जिसके जिसमें जैसे कि पिछले 3-4 साल से शिया मुसलमानों के साथ हो रहा है, खासतौर पर कराची में हो रहा है, तो ये एक तरह का जो प्रॉक्सी वॉर कही है या जो सेक्टेरियन जो स्ट्राइफ है जो कि जिस तरह से सीरिया में शुरू हो चुका है, इराक में उन्होंने, अमेरिका ने शुरू कराया, ये उसी उसी का मुझे सिलसिला लग रहा है, क्योंकि जाहिर है जब ये सब कुछ होता रहेगा तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अच्छा, पाकिस्तान की तरक्की से किसको, किन ममालिक को खदशा हो सकता है, पाकिस्तान में मुसलमान आपस में, या अगर अभी तो उस मजहब बरादरी की बात हो रही है, ये बताइए कि जो शिया अपने भाई हैं हमारे, उनके इस दुनिया इस्लाम में उनके सबसे ज़्यादा खिलाफ कौन है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन हमारे सामाइन को सब सब इल्म है, और जो जिस तरह से पीछे से मदद आ रही है और बाहर से लोगों के मुल्कों की, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये जो है ये प्लानिंग जो है वो अमेरिका की और इसकी है, सहयोगी हुकूमत की है, और इसकी जो जो फंडिंग है वो अपने हमारे अरब ममालिक से आ रही है, और मैं उन ममालिक का नाम नहीं लेना चाहता। तो लेकिन इसका सबसे जो सबसे बड़ी चीज़ ये है जो जब जहाँ तक तो मुज़ाकरात की बात है, मैं मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि मुज़ाकरात की कोशिश जारी रहे, और वो ये हो सकता है कि मुज़ाकरात के साथ साथ फिर वो उनके साथ कार्रवाई की भी उनको धमकी देनी पड़े, लेकिन जो जैसे अब 25 गुरुओं का सुना है कि मुमकिन है कि शुरू में इनके साथ बैठ के बात हो और बाकी जो जो तालिबान के जो जो गुरु हैं उनसे
बहुत
जाहिर
शुक्रिया
उनको अलग
सिद्दीकी
करना
साहब
पड़े।
जी,
देखा जी
बहुत शुक्रिया
जी
यावर साहब। अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं उसमें आमतौर पर तालिबान शामिल नहीं होते, बहरहाल इनका अपना नज़रिया है, लेकिन आप देखें कि क्वेटा के वाक़यात हों या फिर क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान के वाक़यात हों या आशूराए मुहर्रम के जो जुलूस कराची में 2-3 साल पहले जो आशूर के दिन जो हमले हुए या अरबईन के दिन जो हमले हुए, या ये सारे वाक़यात जो हैं इन सब की जिम्मेदारी तालिबान ने ली, और सबसे बढ़कर ख़ुद GHQ पर जो हमला हुआ, ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज का सबसे बड़ा इदारा उसमें तालिबान मुलव्वस थे, तो अब ये कैसे कहा जाए कि तालिबान इतने बड़े बड़े वाक़यात में मुलव्वस नहीं होते।
जी, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि तालिबान इसमें मुलव्वस नहीं है। तालिबान एक्चुअली, ये अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं आप
जी अब चलते हैं कराची स्टूडियो। आगा साहब, मैंने एक सवाल किया था यावर साहब से, क्या आप उसका जवाब देना जहमत गारा करेंगे?
जी हाँ, मैं याद कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि देखिए क्वेटा में जो हज़ारा कम्युनिटी के साथ हुआ उसमें भी तालिबान, अलकायदा और जंगवी ग्रुप शामिल थे। इसके बाद कराची में जो हो रहा है उसकी भी जिम्मेदारी यही लोग करते हैं। इसके बाद गिलगित में जो कुछ हो रहा है जैसे कि आपने फरमाया उसमें की जिम्मेदारी ये कबूल करते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है कि जो गैर मुल्की आकाओं के पैसों पर उनके इशारे पर काम कर रहा है, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि ये जुमला जो सिद्दीकी साहब ने कहा, ये मेरा ख्याल है कि उनको इत्तला सिलसिले में ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया है, और उन्होंने अभी हाल ही में उनकी फहरिस्त भी दी है, वो जेलों के अंदर हैं और चौधरी इफ्तखार साहब जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सरबराह हैं उन्हें दिखाया है और उन्होंने कहा कि आप एक ऐसा लेजिस्लेशन लेकर आएँ ताकि ये लोग जो हैं जिनको हम पेश करें तो इनको कोर्ट जो है विटनेस के ना होने की बुना पर इनको आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको मालूम है कि इस सिलसिले में एक कानून भी पास हो गया कि हम विटनेसेस को पूरा उसको सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उनको तहफ़ फराहम करेंगे। तो ये सारे इकदाम हो रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कई ममालिक मिलकर पाकिस्तान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक प्रॉक्सी वार है। आपको मालूम है कि मुसलमानों की फ़ौज को, उनका हदफ यह है कि मुसलमानों की फ़ौज को कमज़ोर कर दिया जाए। देखिए क्या हुआ इराक़ में, क्या हुआ इराक़ में, किस तरीके से है मुसलमानों के पूरे तो पूरे तरीक़ेकार वहाँ की फ़ौज सबको तितर बितर कर दिया। सीरिया में क्या हुआ, सीरिया में भी बिल्कुल यही हुआ। और सीरिया के अंदर जो भी हुआ उसके अंदर, माफ़ कीजिए मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ कि हमारे ही मुसलमान भाई जो अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ते हैं उन्होंने ये सारे काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इस बात की गमबाजी हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों को मफलूज कर दें। अब आप देखिए मिस्र में क्या हो रहा है, मिस्र में किस तरीके से जो है एक इलेक्टेड हुकूमत को जो है उनको हटाया गया, और महज इसलिए हटाया गया कि साहब कि उनको अरब ममाल बाज़ अरब ममालिक को जो कि दौलतमंद हैं और जो अमेरिका के हलीफ हैं, अमेरिका के दोस्त हैं, उनको इस बात का ख़तरा था कि कहीं ये तहरीक जो है कहीं हमारे इलाकों में ना आ जाए, हमारे मुल्क में ना आ जाए। तो यही लोग जो हैं ये सहूनी ताकतों के साथ मिलकर अब्बास भाई ये पाकिस्तान समेत सारे ममालिक की जो अस्करी ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं। और जो कुछ भी चर्च पे हमला हुआ इससे जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जब जाएंगे और जब वो पहुंच चुके हैं न्यूयॉर्क में तो लोग कहेंगे कि आपकी अकलियत के सिलसिले में आप उनको तहफ़ फराहम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के आइन के अंदर तो अकलियतों को वही तहफ़ हासिल है कि जो एक आम मुसलमान को हासिल है या एक आम पाकिस्तानी को सिटीज़न को हासिल है। फिर देखिए उसमें ये तो ये वाकया अभी क्रिश्चियन के साथ इतना बड़ा वाकया हुआ है जिसके पूरे पाकिस्तान एक साथ खड़ी हो गई, पूरी कौम ने इसकी मजम्मत की, सिविल सोसाइटी ने इसकी मजम्मत की, हर तबके ने बड़े बड़े जुलूस निकाले गए और उनने यकजहती का मुजाहरा किया। इसके अलावा आप देखिए कि अहले तशी को किस बेदर्दी से मारा जाता है, इनकी तो तादाद मेरा ख्याल है 80 होगी, यहाँ क्वेटा के अंदर 200-200 आदमियों को एट ए टाइम जो है वो मारा गया है, और इसके बाद भी यह लोगों ने सब्र व तहमल का मुजाहरा किया है। मैं फिर भी आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हुकूमत पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये एक प्रॉक्सी वार है और प्रॉक्सी वार के सिलसिले में एक हिकमत अमली बनाना चाहिए। हमीद गुल साहब ने आज जो अखबारी बयान दिया है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, उसमें हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। देखिए इनकी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की फौज को शुमाली वजरिस्तान में फंसा दें। अच्छा बहुत
मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा,
इलाका देखा ही नहीं है, ये इतना मुश्किल टेरेन है, इतना मुश्किल टेरेन है कि पाकिस्तान की फौज के लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो
अगर साहब अभी आपने अपनी गुफ्तगू में इस सवाल के जवाब में उससे पहले भी दो तीन बार प्रॉक्सी वार का लफ्ज इस्तेमाल किया, जाहिर है प्रॉक्सी वार तो ये होती है कि जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रॉक्सी वार की जो बात आप करें, प्रॉक्सी वार तो वो होती है कि दो ग्रुप किसी तीसरे मकाम पर जाके जंग और मैदान जंग को गर्म करें और वहाँ पर जंग हो, लेकिन यहाँ पर जो आप प्रॉक्सी वार फरमा रहे हैं तो जाहिर है कि एक ग्रुप है, ख़ास ग्रुप है जिसे तालिबान कहते हैं, तालिबान फिक्र जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान के मासूम नियत्थे और बेगुनाह शहरियों का खून बहा रहा है, तो उसकी खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है, एक ही ग्रुप है जो बेगुनाह लोगों का खून बहा रहा है, तो ये प्रॉक्सी वार कैसी?
नहीं नहीं अब्बास भाई आपको मालूम है प्रॉक्सी वॉर की जो है बड़ी डेफिनेशन बदल चुकी हैं। एक प्रॉक्सी वॉर में ये भी होता है कि किसी एक ग्रुप को जो है कई ममालिक मिलकर सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, तालिबान को कई ममालिक सपोर्ट कर रहे हैं पैसे से, असलहे से। मेरा ख्याल है कि आप भी इतनी मालूम रखते हैं जितनी मैं रखता हूँ, बल्कि आप मुझसे ज्यादा मालूम रखते हो। प्रॉक्सी वॉर की तो डेफिनेशन बदल गई है, तो पाकिस्तान को तो चारों तरफ से, आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा हुआ है, तो ये एक प्रॉक्सी वॉर की एक नई मैनिफेस्टेशन है, एक नई शक्ल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तो इस सिलसिले में बिल्कुल तैयार है। मैंने आपसे अर्ज किया कि इसके बावजूद भी कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को कितना बड़ा, कितनी 34 खवातीन मारी गई, 7 बच्चे मारे गए, फिर इसके बाद कितने लोग जो है वो बेचारे मारे गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये रिव्यू नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा बातचीत होनी चाहिए, बातचीत करने के बाद ये है कि एक फैसला होगा। और मैं आपसे बता दूं कि पूरा साम्राज्य की पूरी कोशिश ये है कि मुसलमानों को इस हद तक मतलब ये कि पस्त किया जाए, इस तरीके से इनको आपस में कंफ्यूज किया जाए। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की खुद जो पढ़ी लिखी मतलब अशरफिया है वो भी कंफ्यूज है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ये कर रहा हूं, मैं तो इस बात पर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ठीक है पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पहले भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ, लेकिन एक अमन को एक और मौका मिलना चाहिए। और ये जो 25 ग्रुप जिसका मैंने इशारा आपको दिया है, जो हमीद गुल साहब ने दिया है, तो वो बिल्कुल मुनासिब है और इनसे बात होनी चाहिए, और बाकी जो ग्रुप है वो खुद ब खुद आइसोलेट होगा।
बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसे ग्रुप से मुज़ाकरात क्यों कर हो सकते हैं जो हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत की कमज़ोरी समझे और न चाहते हुए भी हुकूमत को इस बात पर मजबूर करे कि वो मुज़ाकराती अमल से निकल जाए, तो ऐसे में मुज़ाकरात कैसे मुमकिन हो सकते हैं?
जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। ये जो यहाँ पर ये जो हो रहा है पाकिस्तान में सारा कुछ, इसके पीछे इसका बहुत बड़ा, ये एक बड़ी गुंजलनाक और बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। इसका एक बहुत वाइडर रेंज में जाके इसका एक एनालिसिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 79 ग्रुप्स जो हैं वो तालिबान के ऑपरेट कर रहे हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं 59 ग्रुप्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, और आज जनरल हमीद गुल ने कहा है कि 30 ग्रुप जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं और 25 जो हैं वो हिमायत कर रहे हैं, जिनमें तहरीक तालिबान भी शामिल है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की तरफ यकदम चले जाना और उनको पेशकश कर देना, मैं ये समझता हूँ इसके लिए पहले मुकम्मल होमवर्क होना चाहिए था, कहीं ये तालिबान की ये साजिश ना हो कि वो जो उन्होंने शरायत इतनी कड़ी रखी है कि उनके जितने भी लोग गिरफ़्तार हैं, आप देखें हुकूमत ने तो गुड जेस्टर किया है, मुसबत अंदाज में मुला ब्रदर को भी उन्होंने रिहा कर दिया, वो अपने ये जो उनके जो बड़े बड़े रहनुमा हैं, जो बड़े दहशतगर्द जो गिरफ़्तार हुए हुए हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों ने बड़े मेहनत शाका के साथ उनको गिरफ़्तार करवाया, तो वो कहीं वो रिहा करवा के फिर वो जो है हुकूमत के हाथ से जो है वो मुज़ाकरात की भी बात वो निकल ना जाए, तो इसके लिए बहुत सोच विचार करनी होगी। ये जो अभी ये पेशावर चर्च के में जो हमले की जो जिम्मेदारी ली है, ये जंदुल हफ्सा आपने ग्रुप कहा, ये बिल्कुल बजा है, उस ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, और ये वही जंदुल्ला है जो जिसका जो जो हेड था वो अमरीकी अनवर गादान नाम का जो वाशिंगटन का वो था रहने वाला, उसने यहाँ पे बनाया, और ये ग्रुप जो है ये गिलगित बल्तिस्तान बलोचिस्तान ये खैबर कुरम एजेंसी और ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान इधर ये ऑपरेट कर रहा है। इस ग्रुप की मैंने जो इत्तलात मुझे जो मिली हैं उनके मुताबिक इनका दावा है कि इनके पास 70,000 मुजाहिदीन हैं और इनके पास 10 से 15,000 फिदाइन हैं। फिदाइन का मतलब ये है कि 10 से 15,000 खुदकुश हमला आवर हैं उनके पास। तो आप ये देखें कि ये एक ग्रुप के पास इतनी स्ट्रेंथ वो बता रहे हैं और वो कर रहे हैं, और उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, ना सिर्फ इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, उन्होंने मेजर जनरल सनाउल्ला पे भी हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है, उन्होंने ये जो गिलगित में जून में वो हुए थे 10 गैर मुल्की जो मारे गए थे उनकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है, और यहाँ तक कि उन्होंने जमीयत उलमाए इस्लाम के जो अमीर हैं मौलाना फजल रहमान पे ये जो पेशावर में बम धमाका हुआ था और उन पे हमले हुए थे और जिनमें अल्लाह ने उनको बचा लिया और खुशकिस्मती उनकी और अल्लाह उन्हें सलामत रखे उनको बचा लिया था, तो ये उन्होंने उन पर भी हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो इसका जो रहनुमा है ये फजलुल्ला मौलाना फजलुल्ला जो हैं वो उधर अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। ये पंजाबी तालिबान का एक ग्रुप है जो असमतुल्ला जो थे जिन्होंने उस वक्त सबसे पहले हिमायत की थी और ये कहा था कि भाई ये मुज़ाकरात होने चाहिए, उनको उन्होंने हटा दिया। अब वही तालिबान जो जिन्होंने हिमायत की थी अब वो मुज़ाकरात की मुखालफत कर रहे हैं और वही ये सारे काम कर रहे हैं, और वो ये एक चाल भी हो सकती है कि वो मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को मजबूर भी किया जाए और डरावा भी दिया जाए और ये भी कहा जाए कि जो है ना ये वगरना ये अमन कायम नहीं होगा, लेकिन ये मुज़ाकरात के आड़ में ये जो ये सारी वारदातें हो रही हैं और वो जो उधर से अपने जो गिरफ़्तार जो लोग हैं उनको छुड़वाया जा रहा है उनकी रिहाई के लिए बात हो रही है, तो ये ना हो कि फिर पाकिस्तान की कौम हाथ मसलती रह जाए और फिर दोबारा नए सिरे से इनके खिलाफ जो है वो हमें साफ़ाराई करनी पड़े। तो ये बहुत सोच समझ के मुज़ाकरात करना चाहिए। नो डाउट जंग जो है ये किसी भी मसले का हल नहीं होती, मुज़ाकरात के जरिए ही मसला हल होना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मैं ये समझता हूँ कि दोनों बैलेंस्ड जो है वो इकदाम किए जाने चाहिए। हुकूमत अगर एक गुड जेस्टर करती है, मुल्ला ब्रादर को रिहा करती है, तो उधर से तालिबान की तरफ से भी, खाओं का कोई भी फैक्टर हो, कोई भी उनका जो जेली तंजीम क्यों ना हो, ये जो जनरल हफ्जा है, इन्होंने खुद कहा है कि उनका उनके साथ बिल्कुल, जो अफगानिस्तान में तालिबान ऑपरेट करते हैं उनके साथ भी, और ये तहरीक तालिबान के साथ भी इनका ताल्लुक है, और ये उनके, लेकिन इनकी अपनी एक शूरा है, ये उनसे मशवरा करने के बाद अपनी शूरा के मुताबिक जो है ये
जी,
फैसला करते
जावाद
हैं।
साहब मैं फिर हाजिर हूँ, वक्त मिला तो मुझे इजाज़त दीजिए। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी ग्रुप हो, मुखालिफ हो, मुज़ाकरात के मुखालिफ हो, जिसने भी ये हमला किया है या इस तरह के जो भी हमले हो रहे हैं जो ग्रुप करते हैं, वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है अपने को मुसलमान कहते हैं, इस्लाम का पैरो कहते हैं। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन से मुसलमान हैं, और कौन सी इस्लामी तालीमात है कि किसी भी मज़हब के पैरोकार को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाए?
ये तो बहुत ही हैरत की बात है। और देखें, ये पिछले 15-16 साल से ये चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ गई है। जब हम लोग यहाँ पे बताने में बैठ कर इसके बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं कि तुम तो ड्रोन हमलों की बात कर रहे हो, या इसराइल में फ़लस्तीनियों को कुछ मार दिया, आपस में मुसलमान एक दूसरे को किस तरह से का कत्लेआम कर रहे हैं। इसके लिए तो यानी इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब ये कि ये तो इतनी हैरत अंगेज चीज़ है कि किसी इस्लाम में, पहले तो अकलियतों की बात आप देखें कि उस अकलियों की हिफाजत के लिए कितना जोर दिया गया है, कि उनके ऊपर और जो जो भी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमान पे एक इस्लामी हुकूमत में आयद होती है वो अकलियतों पर नहीं होती, वो तो एक जगह है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये जो लोग अपने को जो इस्लाम के नाम पे जो जिहादी कहते हैं और जो जंग कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि तुमने कभी कुरान में ये देखा जो अल्लाह रसूल का जो हुक्म है कि एक कतरा खून के बहाने के बारे में जो हमने सुना हुआ है, और वो कहते कहते ज़बान खुश्क हो गई है कि जिसका कि जिसने किसी एक एक शख्स की, उसमें ये नहीं कि मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जान ली जैसे कि उसने पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। ये इन लोगों को कौन इस्लाम ऐसा बता रहा है, कौन इनको इनको इनके दिमागों को में ये जहर भर रहा है? यानी इसमें मुझे फिक्र ये होती है कि जिस किस्म के जो जो मजहबी लीडरान जो जिन जिनसे ये अपना मजहब सीखते हैं, उन लोगों के ऊपर भी एक नज़र सारी करनी चाहिए कि उनका क्या अपना क्या उनका क्या एजेंडा है इस सिलसिले में। अब तो ये हालत हो गई है कि दिमाग काम कर नहीं करता कि किस तरह से हम एक दूसरे को काट के मारे दे रहे हैं। और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये शिया सुन्नी या ईसाई मुसलमान का नहीं है, बल्कि सुन्नियों में आपस में इतने ज़्यादा इतने क्या कहना चाहिए फ़िरके बन गए हैं कि एक दूसरे को भी वो तकफीरी उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। तो अब अल्लाह यानी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा, लेकिन मुझे मेरा दिमाग नहीं काम करता।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, हो रहा है जी, बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना वक्त हमें इनायत किया। आगा साहब, आप यकीनी तौर पर आप जैसे दीगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अमन का एक और मौका दिया जाए, लेकिन APC हुई, APC में ये सब ने कहा कि ठीक है मुज़ाकरात किए जाएँ। उसके बाद आप जैसे मुख्तलिफ बुज़ुर्ग साफ़ियों ने और दीगर जमातों के नुमाइंदों ने एक टॉक शो में भी इस बात की हमायत की, लेकिन अब जब इस तरह का हमला हो गया तो देखने में आया है कि पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, तहरीक इंसाफ हो, या फंक्शनल मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, इस जैसी दीगर तंजीमों और जमातों और पार्टियों ने अब खुल के कह दिया है कि इस सूरत हाल में तालिबान से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो अब जिस APC की बुनियाद पर हुकूमत मुज़ाकरात करने जा रही थी, अब उसमें तो आधी जमातें जो हैं वो मुखालिफ हो गईं, तो क्या अब ऐसे में भी हुकूमत इस जुरत के साथ जो पहले उसके पास पाई जाती थी तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगी, या मजमूई तौर पर उसूली तौर पर मुज़ाकरात करने को तैयार होगी?
नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आपने हवाले दिए हैं मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के, मैंने पहले भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ किया था कि जो चर्च का वाकया हुआ है जिसमें कि इतने बड़े 80 के करीब जो हैं औरत मर्द बच्चे जो हैं वो मारे गए, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को रिव्यू करना चाहिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। और आपको मालूम है शाह अहमद कुरैशी साहब के जो तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं और पाकिस्तान के एक ज़माने में वज़ीर ख़ारजा रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है तालिबान से अमन की भीख मांग रहा है, ये उनके अल्फाज हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट पैदा किए हैं। तो और लेकिन फिर उन्होंने दूसरा जुमला ये भी कहा कि ठीक है कि ये पाकिस्तान आजकल मुसीबत में है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान में अमन की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि सारे लोग ऐसे नहीं हैं कि जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि फाटा के अंदर आवाम भी हैं जो पाकिस्तान दोस्त हैं, तो उनका भी ख्याल रखते हुए उनसे बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बड़ी हलाकतें हुई हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि अमन को मौका देना चाहिए। बात असल ये है कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक कोशिश की जा रही है सहूनी ताकतों से और साम्राज्य की कि किसी तरीके से पाकिस्तान की फौज जो है वो शुमाली वजीरिस्तान में चली जाए और वहां पे फंस जाए। मैंने पहले भी कहा था कि ये टेरेन जो है बहुत मुश्किल टेरेन है और बहुत से मसायब का जो है उनको सामना करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की फौज जैसे कि पहले भी जनरल कियानी साहब ने फरमाया था कि अहलियत ही रखती है, सलाहियत ही रखती है, उसके पास हथियार भी है, उनसे मुकाबला करना चाहती है, लेकिन क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल भी इतनी खराब है, पाकिस्तान की मईशत इतनी खराब है, तो वो चाहते हैं कि जरा सा एक अमन के जरिए कुछ थोड़ा सा ठहराव मिल जाए, थोड़ा सा मतलब ये कि मामला जो है रुक जाए, तो यह है कि फिर बातचीत आगे बढ़ सकती है। और जैसा कि आज 25 ग्रुप के सिलसिले में हमीद गुल साहब, क्योंकि कोई मामूली आदमी नहीं है, उनका बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के इस खित्ते पे, तो जब उन्होंने 25 ग्रुप की जो बात की तो यकीनी तौर पर 25 ग्रुप से या तो उनकी बातचीत हुई होगी या उनको बड़ी बड़ी मुस्तनद जो है मालूमात फराहम की गई हैं। तो अगर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अस्करी क्यादत तो वो बिल्कुल चाहेगी कि उनके साथ बातचीत हो, और अगर बातचीत फेल भी हो जाती है तो मैं जुमला संदयाब अली खान का मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था कि अगर ये मुज़ाकरात फिर भी नाकाम हो जाते हैं तो हमें ताकत का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ आ चुकी हैं। देखिए मैंने पहले भी अर्ज किया, तो आपने मुझसे पूछा कि प्रॉक्सी वार क्या है। देखिए चंद ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह इराक को तबाह किया, जिसको सीरिया को तबाह किया, मिस्र को तबाह किया, ये वही सहूनी ताकतें हैं, वही साम्राज्य है। अगर मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी लोग नहीं समझ रहे तो जाहिर है कि हम उनसे सिर्फ यही दुआ करते हैं कि खुदा
पता करे आपसे ही करना चाहूंगा
ममालिक हैं ये, इनके पास दौलत कब तक रहेगी और दौलत के नशे में जिस तरीके से वो मुसलमान भाइयों को खून में नहला रहे हैं, क्या ये उससे बचे
जी। अगर साहब अगला सवाल भी मैं आपसे करना चाहूंगा कि आपने फरमाया कि हमीद गुल साहब ने कहा कि 25 ग्रुप ऐसे हैं जो मुजाकरात करना चाहते हैं, 5 ऐसे हैं जो मुखालिफ हैं, तो ये जो आदाद व शुमार की बुनियाद पर या फिगर की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम हुकूमत और फौज कब तक सब्र तामुल का मुजाहरा करते रहेंगे साहब? 25 तो हामी और 5 मुखालिफ हैं और वही 5 जो है वो क़यामत ढाई चले जा रहे हैं, तो कब तक इस सब्र तामुल का मुजाहरा होता रहेगा?
वैसे सर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि इस बातचीत के आगाज से पहले ये हमले रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे, हमले जारी रहेंगे। देखिए ये एक मंसूबा बंदी है सऊनी ताकतों की और साम्राज्य की, ये कोशिश करेंगे कि आखिरी वक्त तक जो है पाकिस्तान को इस तरह जिज किया जाए कि अस्करी क्यादत और सियासी क्यादत जो है वो दस्तबरदार हो जाए गुफ्तगू करने के सिलसिले में, अमन की मज़ारत करने से। तो ये तो हमले जारी रहेंगे, आज ये हमला हुआ, हो सकता है कि कल, अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आ रहा था तो एक टिकर चल रहा था कि कराची में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का मतलब उनको इत्तला मिली है, तो ये सूरत हाल जो है वो जारी रहेगी, मैं तो खुद आपसे अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन यह है कि इसके साथ साथ जो है बातचीत भी होनी चाहिए, और बातचीत के बाद अगर कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर मैं वो संदरियाज वली साहब की जो है मैं बात आपकी खुद में पेश करूंगा कि बिला तफरीक जो है ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए और जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनके अजाइम बहुत बढ़ गए हैं और इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि उनको, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब अरब ममालिक से और सऊनी और साम्राज्यी ताकतों से उनकी हिम्मत अफजाई इतनी फैल चुकी है, बढ़ चुकी है कि वो चाहते हैं कि वो अपने मंसूबे पे कामयाब हो जाएं। लेकिन मैं फिर भी आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस वाक्य के बाद जो चर्च का वाक्य हुआ है, जिस तरीके से पूरी पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकल आई और उन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा किया, दे हैव सेंट ए मैसेज टू दीज मिलिटेंट्स दैट द पाकिस्तानी नेशन इज यूनाइटेड कम व्हाट मे, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव ए पार्लेस विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वी आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 25 ग्रुप भी आ जाते हैं तो कम से कम ये होगा कि इनके अंदर डिवीजन तो होगा, और इसके बाद वो मतलब ये कि तेजी जो हमलों में होती है, मेरा ख्याल है, मेरी एक नाकिस राय है, वो नहीं होगी।
बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश है। यावर बुखारी साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, 1.5 से 2 मिनट के वक्त में मैं जवाब चाहूँगा। आप देखें कि मसीही बरादरी पर जो हमला हुआ है उसकी काफ़ी मुमासलत शाम में जो ग्रुप्स मसीहियों पर मालूला और दीगर इलाकों में जो जुल्म ढा रहे हैं उन्हीं से मिलती जुलती है, और शाम में जो ग्रुप्स मसीहियों पर हमला कर रहे हैं उन्हें बरह रास्त तौर पर सऊदी अरब की हमायत हासिल है। और पाकिस्तान में भी बहुत से मुबसिन का कहना है कि जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ अरब ममालिक जब तक उनकी फंडिंग ना रोकी जाएगी ये हमले होते रहेंगे। तो क्या पाकिस्तान में सियासी और सहाफती हल्के इस तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं कि कौन असल है इसके पीछे फंडिंग कर रहा है माली एतबार से?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में मैं ये कहूँगा कि ये पहली मर्तबा है कि सऊदी अरब के ऊपर तनकीद की गई है। सहाफ़ियों ने भी तनकीद की है, मीडिया ने भी तनकीद की है और पाकिस्तान के अवाम ने भी तनकीद की है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब ये एक वेव दोबारा दहशतगर्दी की आई है, ये उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान ने शाम में जो सऊदी अरब और अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका को पैसे देकर जो करवाना चाह रहे थे, उजरती कातिल के तौर पर अमेरिका वहाँ जाना चाह रहा था हमला करने के लिए, तो ये पाकिस्तान ने उनका साथ नहीं दिया। और ये ख़बरें भी यहाँ पर आ चुकी हैं कि सऊदी अरब के हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान ने शाम के मामले पर सऊदी अरब की खुलकर हिमायत
नहीं की। बहुत शुक्रिया आपका।
वहाँ पर अमरीकी हमले को जो है उसकी हिमायत नहीं की, तो इसमें कोई
जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे मोहज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। और यकीनी तौर पर इस बात को पाकिस्तान के आमायदीन अकाबरीन सियासतदानों मुफक्रीन दानिश्वरों और सहाफ़ियों को सियासतदानों को समझना होगा कि पाकिस्तान में अगर प्रॉक्सी वार है तो किसकी तरफ से इसकी माली फंडिंग हो रही है, कौन इन दहशतगर्दों को परवान चढ़ा रहा है और कौन उनकी पुश्त पर खड़ा है। और जब तक उस बुनियाद को ना रोका जाएगा, उस माली फंडिंग को ना रोका जाएगा, पाकिस्तान में शायद दहशतगर्दी का सिलसिला इतनी आसानी से ना रुक सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासित जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।